डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 19 मैथ्यू 27 से 28 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 19 मैथ्यू 27 से 28 है। सैनिकों को यीशु के क्रॉस को ले जाने के लिए कम से कम उसके लिए यह क्षैतिज बीम एक दर्शक साइरेन के साइमन को बुलाना पड़ा। अब मार्क हमें बताता है कि यह अलेक्जेंडर और रूफस का पिता था। तो यह वह व्यक्ति था जिसे मार्क के दर्शक जानते थे। और यदि मार्क रोम को लिख रहा था तो यह समझ में आता, क्योंकि बहुत सारे लोग रोम चले गए। और वास्तव में अधिनियम की पुस्तक के अनुसार यरूशलेम में बहुत से यहूदी विश्वासियों को वास्तव में एक निश्चित बिंदु पर नहीं छोड़ा गया होगा, हालांकि तब उनके पास अन्य विश्वासी थे, लोग बाद में विश्वासी बन गए। लेकिन रोमनों ने साइरेन के साइमन को ऐसा करने के लिए तैयार किया। अब साइरीन के साइमन की पृष्ठभूमि क्या थी? साइरेन उत्तरी अफ्रीका में लीबिया के साइरेनिका में एक बहुत बड़ा शहर था, और यह पूरी तरह से आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों से आबाद नहीं था। शायद कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह लगभग एक तिहाई स्वदेशी लीबियाई, लगभग एक तिहाई यूनानी थे जो वहां बस गए थे, और लगभग एक तिहाई यहूदी थे। इसमें एक बहुत बड़ा यहूदी समुदाय था, बाद में नरसंहार में उन्हें काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। लेकिन साइरीन के साइमन, ठीक है, साइमन नाम एक यूनानी नाम है, लेकिन यह एक यूनानी नाम था जो यहूदियों के बीच बेहद लोकप्रिय था। और यहूदियों के बीच इसके इतना लोकप्रिय होने का कारण यह था कि यह पितृसत्तात्मक नाम शिमोन से काफी मिलता जुलता था, और इसलिए यह एक सामान्य यहूदी नाम था। तथ्य यह है कि वह व्यक्ति फसह के लिए यहां आया है, यह सुझाव दे सकता है कि वह यहूदी है, वह फसह का पालन करने के लिए आया है। दूसरी ओर हो सकता है कि वह इस क्षेत्र में बस गया हो, लेकिन यदि वह इस क्षेत्र में बस गया तो संभवतः वह इस क्षेत्र में इसलिए बसा क्योंकि वह यहूदी था। मेरा मतलब है, यदि आप आवश्यक रूप से गैर यहूदी होते तो यह आपके लिए सबसे मैत्रीपूर्ण क्षेत्र नहीं होता। जेरूसलम, कैसरिया और मैरिटिमा के आसपास वह अलग था, परंतु यरूशलेम में और यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में वह मैदान से आ रहा है। लेकिन अगर वह यहूदी है तो वह खेत से नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने खेत में काम किया है। यह फसह है। तुम फसह के पर्व के दौरान खेत में काम नहीं करना, तो वह मैदान से आ रहा है। फसह के दौरान यरूशलेम अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला था। आप शायद बेथनी में जैतून पर्वत पर, जहां यीशु सप्ताह के कुछ समय ठहरे थे, रुक सकते हैं। आप यरूशलेम के बाहरी इलाके में रह सकते हैं, लेकिन भले ही बहुत से लोग मेहमानवास थे, फिर भी कुछ लोगों को बस तंबू लगाना पड़ा। किसी भी स्थिति में साइरीन का साइमन आ रहा है। और रोमन, याद रखें, उन्हें लोगों को अस्थायी रूप से सेवा में नियुक्त करने की अनुमति है। यदि उन्हें आवश्यकता हो तो उन्हें अपने गधे या कुछ भी ले जाने की अनुमति है, तो वे उससे ऐसा करवाते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, वे इसे स्वयं नहीं करना चाहते हैं, और यीशु स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को कोड़े मारने की प्रथा थी, लेकिन शायद उसे बहुत कोड़े मारे गए थे, अन्यथा वे संभवतः उससे पूरे रास्ते स्वयं ही ऐसा करने को कहते। तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और अच्छी तस्वीरों के विपरीत शायद उसके शरीर पर कोई लंगोटी नहीं थी। आम तौर पर लोगों को शर्म की बात के रूप में नग्न करके मार डाला जाता था, पिटाई के लिए उन्हें नंगा भी किया जाएगा, और सूली पर चढ़ाना फांसी का सबसे शर्मनाक रूप था। यह क्रांतिकारियों और गुलामों के लिए था, केवल एक चीज जिसके बारे में मैं जानता हूँ वह लगभग उतनी ही भयानक लगती है जितनी कि रोमनों द्वारा इस्तेमाल की गई सजा एक बहुत ही भयानक सजा थी। यह वह है जिसकी ओर यीशु इशारा करते हैं। यहूदी लोगों को ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, परंतु जब यीशु इस विषय में कहते हैं कि यदि तुम इन छोटों में से किसी को ठोकर खिलाओ तो भला होता कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट लटकाया जाता और तुम समुद्र के बीच में फेंक दिए जाते, वह मैथ्यू 18 में वापस आता है। खैर, एक चक्की वह शब्द जो वहां इस्तेमाल किया गया है, वैसे यह सिर्फ एक नियमित चक्की नहीं है जिसे एक महिला एक छोटे मोर्टार और मूसल में पीसती है, बस वहां एक चक्की के साथ पीसती है। यह गधा चक्की का पाट था। यह एक सामुदायिक चक्की थी, एक गांव की तरह जहां गधा घूमता था और चक्की घुमाता था और उसी तरह अनाज पीसता था। यह एक बहुत बड़ी चक्की थी और रोमन जो कभी कभी करते थे वे कभी कभी करते थे, यह विशेष रूप से उस मामले में होता था जब कोई व्यक्ति अपने पिता या अपनी मां की हत्या का दोषी होता था। वे उन्हें एक सांप, एक बिच्छू और एक बिल्ली के साथ एक बोरे में बंद कर देते थे और उसे बंद कर देते थे, इसलिए उस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मार दिया होगा, और फिर वे उसे तिबर नदी या पानी में फेंक देंगे ताकि वह व्यक्ति डूब जाए। संभवतः बिल्ली के लिए भी बहुत स्वस्थ नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक अलग कहानी है। इसलिए सूली पर चढ़ाए जाने के मामले में इसका मतलब धीमी यातना से हुई मौत थी। कभी कभी लोगों को मरने में कुछ दिन लग जाते थे। यदि वे नहीं चाहते कि उन्हें मरने में इतना समय लगे तो वे एक हथौड़ा ले सकते थे और उनके पैर तोड़ सकते थे ताकि वे खुद को ऊपर न उठा सकें, ताकि वे सांस लेते रह सकें। और सप्त का दिन आने के साथ जॉन के सुसमाचार में यही मांग की गई है। लेकिन किसी भी स्थिति में उन्हें नग्न अवस्था में सूली पर चढ़ाया जाएगा। यह फांसी का सबसे शर्मनाक तरीका था। यह धीमी यातना से हुई मौत थी। तुम्हें कोड़े से ये सभी घाव होंगे, विशेषकर तुम्हारी पीठ पर। संभवतः आपके सामने भी कुछ होंगे। आप अपने घावों से मक्खियां नहीं उड़ा सकते। अपशिष्ट उत्सर्जन के मामले में तो यह सबके सामने आ ही जाएगा। अत्यधिक अपमानजनक, हालांकि वह इसका सबसे बुरा हिस्सा नहीं था, मुझे यकीन है। यदि व्यक्ति खून की हानि से बच जाता है, सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक कोड़े मारे गए हो या उसे सूली पर चढ़ा दिया गया हो, तो वह रक्त की हानि से सबसे तेजी से मर सकता है। यदि नहीं तो निर्जलीकरण से, विशेष रूप से दिन के उजाले के दौरान। रात ठंडी हो सकती है, लेकिन दिन के उजाले के दौरान, विशेष रूप से वर्ष में कई बार आप निर्जलीकरण से मर जाएंगे। लेकिन अगर आप उन सभी चीजों से बच गए तो अंततः आप दम घुटने से मर जाएंगे, क्योंकि क्रॉस की स्थिति में आपका डायाफ्राम आपके फेफड़ों में हवा को तब तक धकेलने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि आप खुद को क्रॉस पर ऊपर की ओर धकेल न सकें। इसलिए कभी कभी उनके पास क्रॉस के नीचे पैरों के लिए एक छोटा सा आसन होता था। निःसंदेह यीशु के पैरों में कील ठोंकी गई थी, लेकिन आखिरकार व्यक्ति मर जाएगा। और यदि उन्हें क्रूस से उतार भी दिया जाता तो वे अक्सर इतने कमजोर हो जाते कि मर जाते। आम तौर पर लोगों को क्रूस से नीचे नहीं उतारा जाता था, लेकिन जोसिफस ने रोमनों से अपने तीन दोस्तों को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद नीचे उतारने के लिए कहा। वह उन्हें देखता है और कहता है, ओह कृपया इन्हें नीचे उतारो, ये मेरे दोस्त हैं। और वह उन्हें नीचे ले जाता है। चिकित्सा उपचार के बावजूद उनमें से दो की वैसे भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सूली पर चढ़ाए जाने से उन्हें बहुत क्षति पहुंची थी। रोमन कानून के तहत निष्पादन दस्ते को कैदियों की कोई भी संपत्ति मिल गई जो अभी भी उसके कब्जे में थी। कंटूबर्नियम 8 सैनिकों का एक दस्ता था। वे वही थे जिन्होंने एक तंबू साझा किया था। आम तौर पर उनमें से केवल आधे को ही इस तरह के कार्य विवरण के लिए भेजा जाएगा। तो हो सकता है कि उनमें से केवल चार ही इस कार्य विवरण पर काम कर रहे हों, और वे उसके वस्त्र के लिए चिट्ठी डाल सकते हैं। निस्संदेह भजन 69 में उन्होंने चिट्ठी डाली है। आप कपड़ों के लिए लॉटरी डाल सकते हैं। और सैनिक हर समय ऐसे ही काम करते थे। हम वास्तव में जानते हैं कि वे अपना मनोरंजन करने के लिए किले एंटोनिया में पोर हड्डियों और ऐसी ही चीजों से खेलते थे। हमें उनमें से कुछ चीजें मिली जो उन्होंने खेली, लेकिन व्यक्ति यीशु के पास जो कुछ था वह वास्तव में एक अच्छा परिधान था, और इसे विभाजित करना उचित होगा, यह उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसके लिए चिट्ठी डाली, लेकिन अन्य चीजें वे आपस में बांट सकते थे। टिटुलस शीर्षक कारण पेनी को सूचीबद्ध करेगा। मेरे पास लैटिन है, लेकिन कृपया मेरे उच्चारण को क्षमा करें। मुझे नहीं पता कि पहली शताब्दी में उन्होंने इसका उच्चारण कैसे किया था, और मैं यह भी नहीं जानता कि अब लैटिन का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन किसी भी मामले में उन लोगों के लिए जो अभी भी कुछ हलकों में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में शीर्षक में अक्सर सजा का कारण सूचीबद्ध होता है, और इस मामले में यह यहूदियों का राजा है, और इसलिए वे उसके वस्त्र बांट रहे हैं। उनकी रुचि अन्य चीजों में है। अन्य क्रॉस में अन्य लोग भी हैं जिन्हें फांसी दी जा रही है, परंतु फिर वे उसे मरकुस के अनुसार लोहबान मिली हुई शराब या मैथ्यू के अनुसार पित्त मिली हुई शराब देते हैं। अब लोहबान, कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि जब शराब को लोहबान के साथ मिलाया जाता था तो इसका सोपरिक प्रभाव होता था। यह एक प्रकार की शराब थी जो दर्द को कम करने में मदद करती थी। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, इस पर बहस छिड़ गई है, लेकिन आम तौर पर शराब के बारे में नीतिवचन 31 में चर्चा की गई है। आप जानते हैं, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो पीड़ित है। इसका उपयोग सामान्य रूप से दर्द को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस मामले में मैथ्यू कहता है कि शराब में पित्त मिला हुआ है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप भजन 69 का संकेत चुकें, जो कि धर्मी पीड़ित के भजनों में से एक है। भजन 22 और भजन 69, ये भजन एक धर्मी पीड़ित के बारे में बात करते हैं जो अन्यायपूर्ण पीड़ा सह रहा है। खैर, अगर यह सामान्य रूप से एक धर्मी पीड़ित पर लागू हो सकता है, तो यह यीशु पर भी उत्कृष्टता से लागू होता है। और गॉस्पेल कभी कभी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इन भजनों के कुछ विवरण भी यीशु के मामले में पूरे हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे यह दिया, लेकिन यीशु ने दर्द निवारक दवा पीने से इनकार कर दिया। वह हमारे दर्द को गले लगाने आए थे, इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से गले लगा लिया। उन्हीं शिष्यों के लिए जिन्होंने उन्हें त्याग दिया, जिन्होंने उन्हें नकारा, यहां तक कि उन्हें धोखा दिया, यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हमारे लिए उसका प्यार कितना महान है। हम बाद में जॉन के गॉस्पेल में पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूं, जो इन भजनों में से एक में भी फिट हो सकता है। और उन्होंने उसे कुछ खट्टी शराब दी। यह एक प्रकार का वाइन सिरका था जो सैनिकों और अन्य लोगों के बीच लोकप्रिय था, जो वाइन सिरका की तरह था, जो बहुत सस्ता था। यह सस्ता था, और इसलिए इसका आमतौर पर उपयोग किया जाता था। और फिर वह चिल्लाया, जॉन के सुसमाचार में यह समाप्त हो गया है। मैथ्यू, विशेषकर मार्क, जो कहता है उसका अनुसरण करने जा रहा है, लेकिन पहले हम अन्य उपहास करने वालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग शुरू में अध्याय 4 श्लोक 3 और 7 और विशेष रूप से अंतिम प्रलोभन में शैतान के प्रलोभन को दोहराते हैं। पहले दो, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यह करें। और फिर अंतिम प्रलोभन, ठीक है, आप क्रूस के बिना भी राजा बन सकते हैं। जिस तरह से वे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर यह वास्तव में भगवान का पुत्र है तो उसे ऐसा करने दें, उसे यह साबित करने दीजिए। जिस तरह से वे उसके बारे में बात करते हैं, वह सुलेमान 2:18 की बुद्धि को उद्घाटित करता है। यह संभवतः अलेक्जेंड्रिया का हेलेनिस्टिक यहूदी कार्य था, जो पहली शताब्दी में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था। क्योंकि यदि धर्मी मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे अपने विरोधियों के हाथ से बचाएगा। लेकिन सोलोमन की बुद्धि में लेखक बात नहीं कर रहा है। जो दुष्ट ऐसा कहते हैं, वे धर्मियों को अन्याय से मार डालना चाहते हैं, और वे कहते हैं, ठीक है, हम भगवान को उसे छुड़ाने दे सकते हैं, क्योंकि वह भगवान का बच्चा होने और एक अच्छा भविष्य होने का दावा करता है। तो इन लोगों की निंदा उन्हीं के शब्दों में की गई। याद रखें मैथ्यू 12:37 क्या कहता है, आपके अपने शब्दों से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, यहां तक कि कथा के भीतर भी। उनके अपने शब्द उन्हें मैथ्यू के श्रोताओं जैसे लोगों के लिए परख रहे हैं जो इस प्रकार के शब्दों से परिचित होंगे। और फिर भी इसमें एक विडंबना है। वे कहते हैं, आह, उसने कहा कि वह दूसरों को बचा सकता है, उसे खुद को बचाने दो। वे एक मायने में सही थे। यदि उसे दूसरों को बचाना होता तो वह स्वयं को नहीं बचा पाता। श्लोक 42। वे कहते हैं कि आपने अध्याय 26 श्लोक 39 और 42 में देखा कि पिता के पास उसके लिए एक विशेष तरीका था। हे पिता, इस कटोरे को मुझसे टल जाने दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यदि वह उस सलीब से नीचे उतर आता तो उसे लोगों की निष्ठा मिल जाती। उन्होंने कहा होगा, वाह, वह सचमुच ईश्वर का पुत्र है, हमने जो कुछ किया उसके लिए क्षमा करें, हमारा वास्तव में यह मतलब नहीं था। लेकिन यह उसके लिए पिता का तरीका नहीं था। और ये लोग, यरूशलेम के लोग, जिन्होंने कहा कि उसका खून हम पर और हमारे बच्चों पर पड़ेगा, एक पीढ़ी बाद वह निर्णय आया जब यरूशलेम नष्ट हो गया था। वह नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे कैसे इकट्ठा करना चाहता था। हम अन्य लोगों से प्रेम कर सकते हैं, हम शायद चाहते हैं कि वे सच सुने, हम शायद चाहते हैं कि ईश्वर कोई नाटकीय संकेत करे जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो। और परमेश्वर कुछ संकेत अवश्य देता है, लेकिन अंततः भगवान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, और अंततः कभी कभी हमें चुनाव करना पड़ता है। हम इन लोगों से प्यार कर सकते हैं, हमें इन लोगों से प्यार करना चाहिए, भगवान इन लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम इन लोगों से प्रेम करें। लेकिन अंततः पिता की इच्छा के प्रति समर्पित होना हमेशा हमारी पहली पसंद होती है, क्योंकि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ जानता है, और उसकी योजना अंततः सभी लोगों तक खुशखबरी पहुंचाने की थी। यीशु यहां उस प्रकार की शिष्यता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका वह हमें अनुसरण करने के लिए कहते हैं। जो कोई अपना जीवन बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा। 10:39 और 16:25 शिष्यों को बताया और स्वयं भी इसका पालन किया। और अंत में वह भजन 22:1 की भाषा में चिल्लाता है, इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं है कि किसी ने इसका आविष्कार किया होगा। यह शर्मिंदगी की कसौटी पर खरा उतरता है। यीशु ने चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यह दिलचस्प है कि यीशु को भजन का संदर्भ पता होगा। हे भगवान, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन भजन मुक्ति के स्वर पर समाप्त होता है। यीशु शायद ईश्वरत्याग का अनुभव कर रहे होंगे। वह परित्याग की इस भावना का अनुभव कर रहा होगा, अलगाव की भावना जिसका अनुभव उसे पहले कभी नहीं करना पड़ा था। लेकिन यीशु को यह भी पता था कि यह रोना एक भजन का था जो पुष्टि के साथ समाप्त हुआ था। परंतु जो श्रोता यीशु के अनुयायी नहीं हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि वह एलियाह को बुला रहा है। मार्क में यह एलोई एलोई है। वह इसे अरामी भाषा में रखता है। मैथ्यू वह इसे हिब्रू में उद्धृत कर रहा है, एली एली माई गॉड आम तौर पर आपको हिब्रू में प्रार्थना करनी चाहिए, निश्चित रूप से हिब्रू में एक भजन। लेकिन एली ठीक है, यह एलियाहू एलिजा की तरह लगता है। और एक मजबूत यहूदी परंपरा थी कि एलियाह संकट में रब्बियों की मदद करने के लिए आएगा। वह संकट में फंसे रब्बियों को बचाने के लिए आएगा, और इसलिए वे उस पर हंस रहे हैं। वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ वह सोचता है कि वह संकट में पड़ा हुआ रब्बी है। वह सोचता है कि एलियाह अब उसकी मदद करेगा। यह उनकी मूर्खता की तस्वीर को पुष्ट करता है। आपके पास अधिनियम 17:18 के समान कुछ है, जहां पॉल स्टोइक और एपिक्यूरियन दार्शनिकों से बात कर रहा है। माना जाता है कि ये लोग बहुत होशियार होते हैं, और पॉल उन्हें यीशु और पुनरुत्थान के बारे में उपदेश दे रहा है। यीशु और अनास्तासियोस, इसमें कहा गया है कि उन्होंने सोचा कि वह उन्हें विदेशी देवताओं बहुवचन का उपदेश दे रहा था, क्योंकि अनास्तासियोस पुनरुत्थान ग्रीक में एक महिला का नाम भी था। आरंभिक चर्च पिताओं में से एक जॉन क्राइसोस्टोम ने इस ओर इशारा किया, और यह ल्यूक के दर्शकों के लिए इस बात को पुष्ट करता है कि इन लोगों को बहुत स्मार्ट माना जाता है। जब बात आती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, तो उनके पास कोई सुराग नहीं है। वे इसे नहीं समझते। वैसे ही ये लोग भी मूर्ख हैं। और विडंबना यह है कि यीशु वास्तव में एलियाह को नहीं बुला रहे हैं। विडंबना यह है कि एलियाह शहादत में यीशु का अग्रदूत था। एलियाह पहले ही आ चुका था। वादा किया हुआ भविष्यवक्ता जॉन द बैप्टिस्ट शहीद हो गया था। खैर, यीशु की मृत्यु 3:00 के आसपास हुई, जो यरूशलेम के मंदिर में शाम के प्रसाद के समय के करीब है। उस समय के बहुत करीब, जब आम तौर पर मेमनों की बलि दी जाती थी। जॉन के सुसमाचार में जॉन कुछ चीजों को कुछ तरीकों से बदलता है, विशेष रूप से जुनून की कहानी में, जहां जुनून की कहानी वास्तव में प्रसिद्ध थी। इसकी बहुत सी बातें लोगों को याद होंगी, इसलिए वह इसमें विशेष रूप से बदलाव करता है, ताकि लोगों को बोनस अंक मिले, क्योंकि वे जो कहते हैं उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जॉन में यीशु को वास्तव में मंदिर में लोगों के लिए प्रमुख फसह मेमने की पेशकश के समय क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। निःसंदेह हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह बात की यहूदी परंपरा है जो ठीक उसी समय की है। जाहिर है उन्हें फसह से एक दिन पहले पूरे दिन फसह के मेमनों को चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार थे जिन्हें मेमनों की जरूरत थी। लेकिन फिर भी आपके पास यीशु की मृत्यु के संकेत हैं। धर्मी की मृत्यु पर संकेतों की अपेक्षा की जाती थी। इनमें से कुछ चिन्ह मार्क में नहीं हैं। उनमें से कुछ मार्क में हैं। लेकिन यदि मार्क संकेतों को नहीं जानता था, या यदि मार्क ने मसीहाई गुप्त रूपांकनों के कारण कुछ संकेतों पर जोर नहीं दिया, तो ल्यूक ने भी उन्हें छोड़ दिया होगा, क्योंकि ल्यूक उस बिंदु पर मुख्य रूप से मार्क का अनुसरण कर रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई चीज केवल एक ही स्थान पर सत्यापित है, यदि आपने इसे कई गुना सत्यापित किया है, तो अच्छा और अच्छा है। लेकिन कभी कभी आपके पास कोई चीज केवल एक ही स्थान पर प्रमाणित होती है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम मैं इस बिंदु पर नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने तर्क दिया है कि यह सिर्फ एक सर्वनाशकारी साहित्यिक युक्ति है। यहां मृतकों को उठाया जाना केवल एक सर्वनाशी प्रतीक के रूप में था। इसमें मेरी समस्या यह है कि मैं यहूदी सर्वनाश का अध्ययन करता हूं। जब मैं मैथ्यू 24 इत्यादि को देख रहा होता हूं तो मैं इसका उपयोग करता हूं, लेकिन इस पाठ की शैली सर्वनाशकारी नहीं है। इसके बहुत करीब धर्मी लोगों की मृत्यु के अपेक्षित संकेत हैं जो हमारे पास हैं, कहते हैं रब्बी साहित्य में, यहूदी विद्या में। जब कोई धर्मी व्यक्ति मरता है तो आप कुछ संकेतों की अपेक्षा करते हैं। खैर, मार्क में पहले से ही कुछ संकेतों का उल्लेख किया गया था और मैथ्यू के पास कुछ अन्य हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह मार्क में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैथ्यू के पास इसके लिए स्रोत नहीं थे। इसलिए हम वास्तव में यह नहीं कह सकते कि मैथ्यू के पास स्रोत नहीं थे। अंधेरा एक प्लेग जैसा दिखता है। पुराने नियम में निर्णयों के कारण आपको अक्सर अंधकार का सामना करना पड़ता है, जिसमें मिस्र में प्लेग के कारण होने वाला अंधकार भी शामिल है। इसके अलावा यहूदी ग्रंथों में इसे कभी कभी अंतिम समय के लिए निर्णय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही मेरा मानना है कि यह आमोस में है, यह निर्णय के रूप में दोपहर के समय अंधेरे की बात करता है। तो आपके पास यह अंधेरा कई घंटों तक रहेगा। थैलस नाम का एक अन्य जाति लेखक है जिसे कुछ ईसाई लेखकों द्वारा उद्धृत किया गया है। थैलस इस ग्रहण के बारे में बात कर रहा था और इसे प्राकृतिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा था, यह कहते हुए कि इसका यीशु की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या थैलस को उस समय ग्रहण के बारे में पता था? क्योंकि ल्यूक की भाषा ऐसी लग सकती है जैसे यह दूसरों से ग्रहण थी, और ल्यूक के लिए भी इसका ग्रहण होना जरूरी नहीं है। यह सिर्फ बादल छा सकता है। लेकिन अगर यह एक ग्रहण था तो क्या थैलस को यह पता है क्योंकि ईसाइयों ने उसे ऐसा बताया है, या क्या वह इसे जानता है क्योंकि वह उस समय ग्रहण के बारे में जानता है? खैर, अब वापस जाकर जांच करने का कोई रास्ता नहीं है। थैलस बहुत पहले मर चुका है। कुछ चीजों की हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत सदियों बाद की बात है। हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास एक सुराग है, और वह यह है कि थैलस को भी इसके बारे में कुछ पता था, और ऐसा लगता है कि वह बहुत शुरुआती दौर में लिख रहे हैं। अतः यह परंपरा बहुत प्रारंभिक प्रतीत होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मृतक कब्रों से बाहर आ रहे हैं। यही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा विवादित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई पुनर्जीवित हो गया, बल्कि यह कि कुछ लोग यीशु की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो गए। यह हमें निश्चित रूप से धार्मिक रूप से क्या दिखाता है, मैंने सिर्फ तर्क दिया है कि इसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन यह हमें धार्मिक रूप से भी दिखाता है कि यह यीशु की मृत्यु है जो हमारे नए जीवन का आधार है। और निःसंदेह यीशु का पुनरुत्थान सबसे अधिक होगा। तब तुम्हारे पास भूकंप है, खाली कब्र के साथ आपके पास भी भूकंप आने वाला है, और वह भी कभी कभी विपत्तियों, न्याय और युगांत विज्ञान या अंत समय की चीजों से जुड़ा होता था। अन्य जाति जल्लाद यीशु की मृत्यु के बाद उसकी पहचान स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति बने, और वे उसके पुनरुत्थान से पहले भी इसे स्वीकार करते हैं। खैर, छंद 55 से 66 की ओर बढ़ते हुए यीशु के शरीर के संरक्षक पुरुष शिष्य कहीं नहीं मिलते। जॉन कहते हैं कि एक था प्रिय शिष्य जो क्रूस तक चला गया, लेकिन मार्क शिष्यों की विफलता पर जोर दे रहा है और बाकी लोग भी अधिकांशतः उसी के साथ चलते हैं। वहां कोई पुरुष शिष्य नहीं था। स्त्रियां वे थीं जो कब्र तक गईं। अब यह सच है कि उन्होंने कम जोखिम उठाया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को फांसी दिए जाने की संभावना कम थी, हालांकि ऐसा हुआ। पुरुषों की तुलना में उन्हें गिरफ्तार किए जाने और प्रताड़ित किए जाने की संभावना कम थी, खासकर अगर लोग सोचते थे कि वे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उन्हें आम तौर पर खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी महिलाएं जोखिम उठा रही थीं, और फिर भी वे इस समय पुरुष शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक साहस दिखा रही थीं। यह कहते हुए शर्म आ रही है कि वह एक पुरुष है, लेकिन किसी भी मामले में अरिंथिया के जोसेफ उन अमीर लोगों में से एक हैं जिन्होंने इसे सुई की आंख से बनाया था। रोमन आमतौर पर अपराधियों को क्रूस पर सड़ने देना पसंद करते थे और पक्षियों को उनकी हड्डियों से मांस खाने देते थे, क्योंकि अगर कोई इतना बुरा था कि उसे सूली पर चढ़ाकर मार डाला जा सकता था, तो वे इतने बुरे थे कि उसे दफनाने से भी इनकार कर देते थे, भले ही कुछ अन्य जातियों की परंपरा में कोई व्यक्ति जिसे दफनाया नहीं गया था वह अधोलोक में प्रवेश नहीं कर सकता था। या यदि वे कटेफ्टे थे तो कहें कि पक्षियों ने उन्हें अलग कर दिया, इस तरह वे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर गए। समुद्र में मरने वाले लोगों को एक भयानक चीज माना जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भूत पानी के ऊपर मंडराता होगा। यहूदी लोगों में ये सभी विचार नहीं थे, लेकिन यहूदी धर्म ने दफनाने की मांग की। तोरा में यह आदेश दिया गया है कि आप किसी को पेड़ पर लटका सकते हैं, लेकिन रात होने पर आप उन्हें नीचे उतार सकते हैं, उन्हें दफना सकते हैं। और इसलिए सीजर ने भी एक बार कहा था कि अपने शत्रुओं को दफन देना सम्मानजनक माना जाता है। उन्होंने कहा कि मैं जीवितों के विरुद्ध युद्ध करता हूं, मृतकों के विरुद्ध नहीं। आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने मृतकों को ले जा सकते हैं और उन्हें दफना सकते हैं। लेकिन यहूदी धर्म ने दफनाने की मांग की। इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि यदि पीलातुस उस बात पर सहमत हो गया था जिसके लिए मुख्य पुजारी यीशु को उसके पास लाए थे, तो इसकी बहुत कम संभावना है कि यदि वह उस पर सहमत हो गया था तो वह उस स्थानीय सम्मेलन के लिए भी सहमत नहीं होगा जहां यह अपेक्षा की जाती है कि शवों को दफनाया जाना चाहिए। और रोम के लोग कभी कभी शवों को परिवार के सदस्यों को दे देते थे, खासकर यदि पिलातुस की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। सूली पर चढ़ाए जाने पर कोई व्यंग्य का इरादा नहीं था, लेकिन अगर पिलातुस का इसमें कोई हिस्सा नहीं था तो पिलातुस ने यह भी नहीं माना कि यीशु एक खतरा था। पिलातुस को संभवतः विश्वास था कि यीशु बिल्कुल एक ऋषि की तरह थे। आप जानते हैं, जॉन के सुसमाचार में यह और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जॉन के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, मैं सत्य की गवाही देने आया हूं। और पीलातुस कहता है, सत्य क्या है? और फिर वह बाहर जाकर कहता है, मुझे उसमें कोई दोष नहीं दिखता। ठीक है, यीशु एक राजा होने का दावा करता है, लेकिन वह कहता है, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मैं सत्य की गवाही देने आया हूं। रोमन लोग सन की दार्शनिकों के बारे में जानते थे, जो कई अन्य दार्शनिकों की तरह सोचते थे कि वे राजाओं के रूप में शासन करते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक मतलब यह नहीं था। उनका अक्सर यह मतलब होता था कि वे राजाओं से अधिक बुद्धिमान हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से शासन करना चाहिए, लेकिन हर कोई जानता था कि निंदक हानिरहित थे। वे सभी राजनीतिक थे। वे बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन रोमन आमतौर पर उन पर हंसते थे। रोम में एक सनकी व्यक्ति अपवाद था जिसने उस दिन समर्पित किए गए नए स्नानघरों का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उसे कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन आमतौर पर वे इन दार्शनिकों को हानिरहित मानते थे। वे केवल हानिरहित ऋषि थे, और इसलिए वह यीशु को उसी तरह देख सकता था। ओह हाँ राजा, लेकिन यह एक अलग तरह का राजा है। यह कोई व्यावहारिक राजा नहीं है, यह सिर्फ एक हानिरहित ऋषि है, इसलिए उसके पास शव सौंपने का कारण होगा, लेकिन अरिंथिया के जोसेफ के पास यह जानने का अभी तक कोई कारण नहीं होगा। जोसेफ के लिए शव मांगना एक डरावनी बात थी, क्योंकि वह खुद को निंदा करने वालों के साथ पहचान सकता था और उस पर खुद लेस मेस्टास का आरोप लगाया जा सकता था, यानी उन पर सम्राट की महिमा के खिलाफ उच्च राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। आप जो सोच सकते हैं उसके विपरीत उसकी स्थिति और उसकी संपत्ति उसकी रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि रोमन गवर्नर विशेष रूप से उच्च स्थिति वाले लोगों को फांसी देना पसंद करते थे जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति थी, क्योंकि तब वे उनकी संपत्ति जब्त कर सकते थे। और पीलातुस अरिंथिया के यूसुफ के साथ ऐसा कर सकता था। जोसेफ ने साहसपूर्वक शव मांगा, और जबकि पुरुष शिष्य जिन्होंने यीशु के चमत्कार देखे हैं, जिन्होंने वर्षों तक उनका अनुसरण किया है, जिन्होंने यीशु ने जो कहा उसे सुना कि वह मरने वाले थे और फिर से जी उठेंगे। ठीक है, हाँ हम सभी मानते हैं कि युग के अंत में पुनरुत्थान होगा, है ना? यह एक सामान्य यहूदी विश्वास था। उनके शिष्यों का मानना था कि वैसे भी, लेकिन उनके शिष्यों को यह समझ नहीं आया और इसे कई अन्य चीजों के साथ मिलाया गया था। अत वे बहुत निराश हुए, उनका विश्वास टूट गया, वे छुपे हुए थे। अरिंथिया के जोसेफ को इस समय आगे आना होगा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में कब्रें उन लोगों की हैं जिनके पास धन है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक ईसाइयों ने सटीक स्थल को संरक्षित रखा है। यह वही नहीं है, आपने गॉर्डन के कलवारी और बगीचे के मकबरे और उन सब के बारे में पढ़ा है। वह कोई सटीक साइट नहीं है। इसे 19वीं सदी में किसी नेक इरादे वाले व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन टाइपोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खोपड़ी के आकार का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। खोपड़ी के स्थान का यह नाम इसलिए नहीं रखा गया होगा क्योंकि इसका आकार खोपड़ी जैसा था। इसका नाम शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि वहां खोपड़ियां थीं, क्योंकि वहां लोगों को मार डाला गया था। इसके अलावा पहली शताब्दी के बाद से यरूशलेम में आकार, रूपरेखा और इलाके में बहुत बदलाव आया है। न केवल वह स्थान है जहां हम मानते हैं कि यीशु को वास्तव में मार डाला गया था, वहां एक चट्टान की खदान है, बल्कि शहर का बहुत सा इलाका भी बदल गया था क्योंकि वे मंदिर को गिरा रहे थे, घाटी में भर रहे थे इत्यादि। लेकिन आरंभिक ईसाइयों ने संभवतः सटीक स्थल को सुरक्षित रखा था। याद रखें, वहां एक जेरूसलम चर्च है जो वर्ष 70 तक वहां था। वहां ईसाई हैं, वहां यीशु के अनुयायी हैं, और पवित्र कब्रगाह का स्थान, चाहे वह बिल्कुल वही कब्र हो, यह उस स्थल के बहुत करीब है। परंपरा को बहुत पहले से संरक्षित किया गया था, और इसके समर्थन में एक विचार यह है कि पुरातत्व से पता चलता है कि यद्यपि यह वर्ष 44 तक शहर की दीवारों के अंदर था, लेकिन वर्ष 30 तक यह दीवारों के बाहर था। लोगों को मार डाला जाना था और शहरों के बाहर दफनाया गया। वह निश्चित रूप से एक यहूदी प्रथा थी, लेकिन रोमन भी इस पर विश्वास करते थे। आम तौर पर आप किसी व्यक्ति को फांसी दे देते हैं और उसे शहर की दीवारों के बाहर दफना देते हैं। खैर, यह अब यरूशलेम की शहर की दीवारों के अंदर है। इसका क्या मतलब है? यरूशलेम की दीवारों का विस्तार हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम द्वारा किया गया था, और वर्ष 44 में हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु हो गई। तो यह परंपरा, कोई भी ऐसी परंपरा नहीं बनाने जा रहा है कि यह शहर की दीवारों के अंदर यीशु के दफन की जगह है, जहां हर कोई जानता था कि आप मर गए और शहर की दीवारों के बाहर दफन हो गए, और यह शहर की दीवारों के बाहर नए नियम में भी कहा गया है। कोई भी ऐसी जगह पर दफनाए जाने की परंपरा नहीं बनाएगा जो शहर की दीवारों के अंदर मानी जाती है। तो यह परंपरा वर्ष 44 से पहले चली आ रही है, जिसका अर्थ है कि यह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के 14 वर्षों के भीतर तक चली आ रही है। यह कुछ बहुत शुरुआती सबूत हैं। इसलिए जो भी अन्य साइटें हैं, मैंने पहले गेट का उल्लेख किया था जो कि नीडल्स आई या उसके जैसा कुछ है, जो भी बाद में हो सकता है। पवित्र सेपुल्चर शायद सही साइट को संरक्षित करता है, शायद बेथलेहम में नेटिविटी गुफा और कुछ अन्य साइटें भी ऐसा करती हैं, लेकिन यह बहुत बहुत मजबूत सबूत है। यीशु का पुनरुत्थान, हमारे पास इसकी कोई वैध समानता नहीं है, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जब अन्य जातियों ने मरने और उभरने वाले देवताओं के बारे में बात की, जो कभी कभी बाद में अधिक लोकप्रिय हो गए, तो मरने और उभरने वाले देवताओं के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन वे जिस बारे में बात कर रहे थे वह मौसमी पुनरुद्धार था। हर वसंत में कोई न कोई अंडरवर्ल्ड से वापस आ रहा था, क्योंकि उर्वरता पृथ्वी पर लौट आई थी। गैर यहूदी मिथकों में आमतौर पर यही होता है, आपको किसी के सशरीर जीवन में वापस आने का विचार नहीं है। वास्तव में यह यूनानियों की एक भयावह धारणा थी। उन्होंने एक लाश के वापस आने के बारे में सोचा, एक डरावनी लाश के वापस आने के बारे में सोचा, अगर उन्होंने मृतकों में से किसी के वापस आने के बारे में सोचा। उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया। लेकिन शारीरिक पुनरुत्थान का विचार डैनियल अध्याय 12 और श्लोक 2 से मिलता है, और यह एक यहूदी अवधारणा थी। यहूदी लोगों को शरीर के पुनरुत्थान की उम्मीद थी, यह कैसा दिखेगा, शरीर कैसे रूपांतरित होगा इत्यादि के बारे में अलग अलग विचार थे, लेकिन यह एक भौतिक अस्तित्व था। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी जो चारों ओर घूम रही थी। शिष्यों को यह कहने के लिए कभी सताया नहीं गया होगा कि उन्होंने भूत देखा है। बहुत से लोग भूतों में विश्वास करते थे, विशेषकर अन्य जातियों में, इसलिए इसके लिए कोई उत्पीड़न नहीं था। लेकिन कुछ यहूदी लोग भी इस पर विश्वास करते थे, भले ही यह उनकी मान्यताओं से असंगत था। हमारे पास अन्य जातियों के बीच शारीरिक पुनरुत्थान का यह विचार नहीं है, और यह फिर से स्पष्ट रूप से यरूशलेम में उत्पन्न हुआ। इसकी उत्पत्ति स्पष्ट रूप से प्रथम शिष्यों से हुई। यह स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही उत्पन्न हो गया था। प्रथम कुरिन्थियों 15 पौलुस कहता है, मैं तुम्हें वह परंपरा देता हूं जो मुझे उन सभी लोगों के बारे में मिली थी जिन्होंने यीशु को मृतकों में से जीवित देखा था। यह बहुत जल्दी वापस चला जाता है। और जहां तक खाली कब्र की बात है, ठीक है, जब यहूदी लोग पुनरुत्थान की बात करते थे तो यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके पीछे एक लाश छोड़ी गई हो। इसलिए पॉल को खाली कब्र का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दफन का उल्लेख किया है। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। तो पॉल सैकड़ों गवाहों का उल्लेख करता है। उनका कहना है कि 500 गवाह थे, जिनमें से अधिकांश आज तक जीवित हैं। आप चाहें तो इसकी जांच कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास एक ही अवसर पर कई गवाह होते हैं। वह कई बार यीशु के प्रकट होने के बारे में बात करता है। मनोवैज्ञानिक धारणाओं के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें यह फिट नहीं बैठता। आम तौर पर यदि यह सिर्फ एक मतिभ्रम है तो आपके पास एक ही समय में कई लोगों को एक ही दृष्टि नहीं होती है। सामान्यतः आपको एकाधिक इंद्रियों के साथ भी मतिभ्रम नहीं होता है, और इसके महज एक मतिभ्रम होने की संभावना अविश्वसनीय है। लेकिन यहां हमारे पास ये सभी लोग हैं, विश्वसनीयता, वे गवाही के लिए मरने के लिए तैयार थे। मेरा मतलब है, आपके पास मॉर्मन की पुस्तक जैसा कुछ है। रहस्योद्घाटन के लिए जोसेफ की प्लेटों के कुछ मूल गवाह, सुनहरी प्लेटें, उनमें से कुछ ने बाद में अपने विश्वास से इनकार कर दिया। आपके पास चार्ल्स कॉल्सन हैं, जो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घोटाले वाटरगेट घोटाले में शामिल थे। उन्होंने कहा, आप जानते हैं हम सभी रिचर्ड निक्सन के प्रति कितने वफादार थे। हमने सोचा हम उसके लिए मर गए होते। लेकिन जिस क्षण एक व्यक्ति ने दलील सौदेबाजी स्वीकार कर ली और कहा, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ था, उन्होंने कहा, हम में से बाकी लोग अपनी गर्दन बचाने और अपनी सजा को यथासंभव कम करने के लिए संघर्ष करने लगे। आम तौर पर लोग किसी ऐसी चीज के लिए नहीं मरते जिसके बारे में उन्हें पता हो कि वह झूठ है। खास तौर पर बहुत से लोग मिलीभगत से होते हैं जो किसी चीज के गवाह होने का दावा करते हैं। ये सभी लोग गवाह होने का दावा करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे गवाह थे। इसके अलावा गॉस्पेल में महिलाओं को पहली गवाह के रूप में उल्लेख किया गया है, और यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आप उनसे उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि यहूदी कानून के तहत एक महिला की गवाही बहुत अधिक मूल्यवान नहीं थी। और यह मेरा विचार नहीं है, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कानून के तहत क्या दृष्टिकोण था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि औरत की गवाही चोर के बराबर होती है, 100 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर थी। हालांकि कुछ परिस्थितियों में महिलाओं की गवाही स्वीकार की जा सकती है, जैसे कि यदि आपके पास कोई पुरुष उपलब्ध न हो। लेकिन यहां हमारे पास पुरुष भी उपलब्ध हैं। रोमन कानून में भी स्त्री की गवाही को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। जोसेफस का कहना है कि किसी महिला की गवाही को उनके लिंग की गंभीरता और गुस्ताखी के कारण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और यूनानियों ने महिलाओं के अविश्वसनीय, अस्थिर होने आदि के बारे में बात की। तो प्राचीन काल में महिलाओं के प्रति आम पूर्वाग्रह। गॉस्पेल महिलाओं को प्रथम गवाह के रूप में क्यों रिपोर्ट करेगा? संभवतः क्योंकि भगवान यही दिखाता है, और निःसंदेह यह उस तरह से फिट बैठता है जिस तरह से हमने ईश्वर को सुसमाचार के माध्यम से कार्य करते हुए देखा है। भगवान नीच लोगों को चुनते हैं, वह उन लोगों को अपने गवाह के रूप में चुनता है जिनसे दूसरे लोग घृणा करते हैं। और यह ईसाई आंदोलन की शुरुआत से ही सर्वसम्मत था। प्रारंभिक ईसाई धर्म में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। हमारे बीच इस बात पर जोरदार बहस होती है कि क्या अन्य जातियों का खतना करने की आवश्यकता है। हमारे बीच इस बात पर बहस होती है कि क्या अन्य जातियों को कोशेर रखने की आवश्यकता है। प्रारंभिक ईसाई धर्म में कई अन्य मुद्दों पर हमारे बीच बहस होती है, लेकिन हम उन लोगों के बीच यीशु की स्थिति के बारे में बहस नहीं करते हैं जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं। और हमारे बीच इस बात पर बहस नहीं है कि क्या वह मृतकों में से जी उठा था। वास्तव में यहां तक कि कुरिन्थियों को भी, जहां पॉल उन्हें अपने भविष्य के पुनरुत्थान में विश्वास करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हें इसका उपदेश दिया और तुमने उस पर विश्वास कर लिया, और इसीलिए अब आप यीशु के अनुयायी हैं। आप पुनरुत्थान पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? लेकिन इसकी सटीक रूप से उम्मीद नहीं की गई थी, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे और यहूदी लोग एक ही बार में सभी धर्मियों के भविष्य के पुनरुत्थान की उम्मीद कर रहे थे। वे यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उस समय से पहले कोई मरे हुओं में से जी उठेगा। हालांकि हम मानते हैं कि हमारे लिए राज्य अभी तक मौजूद नहीं है, भविष्य इतिहास में टूट गया है। यीशु पुनरुत्थान का पहला फल है, 1 कुरिन्थियों 15। नया नियम कहता है यीशु मृतकों में से पहलौठा है। उनका पुनरुत्थान हमारी शाश्वत आशा की गारंटी है कि हम भी पुनर्जीवित होंगे। हम जीवित हैं क्योंकि वह जीवित है। और यह इसे पुनरुत्थान पर फरीसियों और सदूकियों के बीच बहस से परे ले गया। क्योंकि सदूकियों को एक पर विश्वास नहीं था, उन्हें कभी कभी फरीसियों के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। फरीसियों का मानना था कि पुनरुत्थान में विश्वास न करना विधर्म था, लेकिन फरीसियों के लिए यह भविष्य के लिए एक सैद्धांतिक आशा थी, लेकिन यीशु के अनुयायियों के लिए यह इतिहास का एक निर्णायक कार्य था, कुछ ऐसा जो पहले ही घटित हो चुका है, कुछ ऐसा जो इतिहास में पहले ही दर्ज हो चुका है। परमेश्वर ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। भगवान ने अपने बेटे यीशु को सही ठहराया है, और हमारे पुनरुत्थान की गारंटी है, क्योंकि पुनरुत्थान पहले ही शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि अधिनियम 4:4 में सदूकी वे वास्तव में परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पीटर और जॉन उपदेश दे रहे हैं, आप जानते हैं आपने मसीहा को मार डाला है। लेकिन अधिनियम 4:4 में कहा गया है वे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि वे यीशु में मृतकों में से पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। पुनरुत्थान एक निश्चित तथ्य था। अध्याय 28। मैंने शुरुआत में ही महान आयोग के बारे में बात की थी। चरमोत्कर्ष कई रूपांकनों को एक साथ खींचता है, लेकिन यहां कथा में हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात भी देखते हैं। हम एक तरह से तीन अलग अलग रिपोर्ट देखते हैं। महान आयोग हमें यह शुभ समाचार घोषित करने के लिए बुलाता है कि यीशु जी उठे हैं, लेकिन पहले दो उदाहरण दिए गए हैं, सकारात्मक उदाहरण और नकारात्मक उदाहरण। अध्याय 28 श्लोक 1-10 में कब्र पर महिलाएं पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। वास्तव में उन्हें दो बार कमीशन किया गया है। वे इसे स्वर्गदूत से प्राप्त करते हैं, वे इसे यीशु से प्राप्त करते हैं। उन्हें पुरुष शिष्यों को यह शुभ समाचार बताना है कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। और फिर हमारे पास गार्डों की रिपोर्ट है, 28:11-15। खैर, एक कब्र पर गार्ड तैनात करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि शव चोरी न हो, कुछ भी न हो, कुछ भी गलत न हो। गार्ड ऐसी रिपोर्ट देते हैं जो विश्वसनीय नहीं है। वे कहते हैं, अच्छा, शव चोरी हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि शव चोरी हो गया था? खैर, हमने देखा कि शव चोरी हो गया है। तो एक मिनट रुकें, आप रक्षक हैं, आपको शरीर को चोरी होने से बचाना है, लेकिन आप वहां देख रहे हैं कि शव चोरी हो गया है, आप में से कोई भी घायल नहीं है, आप अपना कमीशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते, तो आपकी रिपोर्ट वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। और फिर भी संभवतः यही वही रिपोर्ट है जो गार्डों ने प्रसारित की थी, क्योंकि मैथ्यू के पास ऐसी रिपोर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है जो प्रचलन में नहीं थी, और कहें ठीक है, यह वैकल्पिक दृष्टिकोण है। लोग यही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि चेलों ने शव चुरा लिया, शिष्यों ने शरीर क्यों चुराया और फिर उस दावे के लिए अपनी जान दे दी, जैसा कि उनमें से कई ने किया। तो यह प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन गार्ड ने यही कहा है। और मैथ्यू का स्पष्टीकरण कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यह डर और लालच है, और इसलिए हमारे सामने एक विकल्प रखा गया है। क्या हम महिलाओं के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और लोगों को यह संदेश देंगे कि यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं, कि वह ब्रह्मांड के भगवान हैं, और वह उन सभी को जीवन प्रदान करते हैं जो उन्हें अपना जीवन देते हैं? या क्या हम उन रक्षकों की तरह होंगे जो झूठ बोलते हैं और यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई को इस डर से नकारते हैं कि दूसरे हमारे साथ क्या कर सकते हैं, रिश्वत के लालच से या जीवन में आगे बढ़ने के लालच से? मैथ्यू यह बहुत स्पष्ट करता है कि वह क्या अपेक्षा करता है, क्योंकि वह महान आयोग के साथ अपना सुसमाचार समाप्त करता है। हमें रक्षकों की तरह नहीं बल्कि महिलाओं की तरह बनना चाहिए, और हमें न केवल मैथ्यू के अपने लोगों को बल्कि सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाना चाहिए। जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देकर और उन सब बातों का पालन करना सिखाकर जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी हैं। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 19 मैथ्यू 27 से 28 है।